ठीक है। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں یہ سورہ یوسف کی 39 سے 42 نمبر آیات ہیں. اس سے پہلی والی آیات کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، وہ مکمل کر لیا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون تک. اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں واقعہ یوسف کو مزید بیان فرماتے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام اب جو ہیں وہ قید خانے میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دو نوجوان بھی داخل ہوتے ہیں، دخل معہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ داخل ہوئے دو فتیان، دو نوجوان. تو ان دونوں نے جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی جو کھانا آ رہا ہے نا، تو کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں کھانے کی تعویل بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اور خواب کا تو ذکر جو ہے وہ بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں تمہیں کھانے کی تعویل بتا دوں گا. اللہ نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل نہیں کیا، میں نے کوئی کالج یونیورسٹی جا کر کے یا کتابیں پڑھ کر کے یا کوئی ستاروں کا علم حاصل کر کے یہ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے مجھے یہ علم سکھایا ہے. مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. تو علم کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو دے دیا. اور ویسے بھی یہ جو علم ہوتا ہے، خوابوں کی تعویل کا علم، خوابوں کی ایکسپلینیشن کا جو علم ہے نا، یہ انسان کو وہبی طور پہ ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قصبی طور پہ نہیں ملا کرتا بلکہ وہبی طور پہ ملا کرتا ہے. قصبی علم اس کو کہتے ہیں جو کہ انسان اپنی محنت سے ایکوائر کرتا ہے، یعنی اسباب اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے، ٹھیک ہے، کتابوں سے پڑھتا ہے. کتابیں کیا ہیں؟ علم کا سبب ہیں. اساتذہ کے پاس جاتا ہے، اساتذہ علم کا سبب ہے، ٹھیک ہے. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. علم ملتا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اسباب کے واسطے سے ملتا ہے. ایسے علم کو کسبی علم کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے وہبی علم، جو کہ وہب یہبو ہبتن، ہبہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہبہ کر دیتے ہیں، تحفتاً کسی کو دے دیتے ہیں. اس کے اندر بیچ میں اسباب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس کو انٹیوشن بھی کہہ دیں، اس کو الہام بھی کہہ دیں، الہامی علم، صحیح ہے. تو خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ الہامی علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں بغیر اسباب کے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی تھوڑی سی مزید تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ادراک ہے کہ کس خواب میں کس بات کا کیا مطلب ہے، کس کانٹیکسٹ کے اندر کیا مطلب ہے، کس نے دیکھا اس کے حساب سے کیا مطلب ہے، یہ تو یعنی अल्लाह ताला की तरफ से ये तौफीक है कि जो कि जिसको कहते हैं ना नुजूल होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये इल्म हासिल हुआ अल्लाह की तरफ से, फिर उसने जो है ना वो अपने इस मुशाहिदों को, जो उसके तजुर्बे हैं कि भाई फलाने शख्स ने उसको ख्वाब बताया था, उसका उसने जो है ना वो अपने इस वहबी इल्म की बुनियाद पर ये तावील दी और वो तावील जो है वो सही साबित भी हो गई। तो अब ऐसा शख्स जो है अगर इन सारे मुशाहिदात और तजुर्बात को किसी किताब के अंदर लिख दे, ठीक है, और फिर उस किताब को तो फिर कोई भी पढ़ सकता है। तो अब वो शख्स जो उस किताब को पढ़ करके अगर उससे मैचिंग किसी का ख्वाब है तो उसकी वो तावील वही बता दे जो कि किताब के अंदर लिखी हुई है, तो ये वहबी इल्म नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ये वहबी नहीं कहलाएगा भाई, इसने तो बस उस किताब के अंदर से पढ़ करके किसी को जो मैचिंग ख्वाब है ना उसकी तावील बता दी है या उसके करीब करीब कोई तावील बता दी है। ये वहबी इल्म नहीं है, ये कस्बी इल्म ही कहलाएगा। और इसकी जो है ना फिर वो कोई एक्यूरेसी भी कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हों, उसके अहवाल जो हैं मुख्तलिफ हों, और किताब के अंदर वो सारे के सारे तो नहीं लिखे हुए, किताब के अंदर तो एक सर्टन लेवल ऑफ डिटेल ही हो सकती है ना, ठीक है। तो इस वजह से जो मशाइख की लिखी हुई चंद किताबें हैं, क्या नाम है उनका, सबसे मशहूर जो किताब रुया या क्या उसका नाम है किताब का, अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, ठीक है, तो वो अल्लामा इब्ने सीरीन की किताब जो है ना वो भी जो आजकल मार्केट में मिलती है ना, वो सारी की सारी इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है, बल्कि दूसरों की भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। बहरहाल आज भी सुना है कि कुछ लोगों के पास ये इल्म होता है, हजरत क्या नाम था उनके, जरूर अली खान रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ है, उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि उनके पास इसका इल्म है वहाबी तौर पर। तो बहरहाल आगे चलते हैं कि इन्होंने ना इसी इस मौके को फिर अपने दावत के लिए भी कैश करना शुरू किया, दावत के लिए भी इस्तेमाल किया कि लोगों को अपने तौहीद का जो 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 अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई थी वो बताया, इनको अपने आबाओ अजदाद के बारे में बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना वो अगली बात कर रहे हैं कि या साहिबी, ए मेरे सहाबा, लेकिन सहाबा कैसे सहाबा, जो मेरे सिजन के सहाबा हैं, ठीक है, मेरे कैदखाने के जो जो असहाब हैं, जो जो कंपेनियंस हैं, ठीक है। तो ये जो रवाफिज होते हैं ना सहाबा कराम के दुश्मन, ठीक है, तो उन्होंने ना इस आयत को जो है वो अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करी, क्योंकि वो जो है वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं नाउज बिल्ला, वो सारे के सारे इल्ला 4-5 के, बाकी सारे के सारे जो है वो मुर्तद हो गए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो हम जवाब देते हैं कि नहीं, सहाबा जो है ये तो सहाबी होना तो बहुत बड़ा रुतबे वाली बात है, और सहाबी को जो है वो तो फैज मिलता है, और सहाबा के बारे में तो कुरान में ये आया और वो आया, तो आगे से वो एक यानी फतीचड़ था, जिसको कहते हैं ना फतीचड़ सा जवाब देना, तो वो एक जवाब ये देते हैं कि सहाबा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी थे, तो देखो उनके साथ क्या हुआ, है ना, वो तो ईमान भी नहीं लेकर के आए, और एक जो है ना वो तो फांसी चढ़ गया, और दूसरा जो यानी सहाबा होना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी सहाबा थे। तो उसके ऊपर हमारे मशायख ने जवाब दिया कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जो या साहिबी कहा है ना, तो साथ साथ एक क्वालिफायर भी लगाया है, ए मेरे कैद खाने के सहाबा, यानी सिर्फ तुम्हारी जो सोहबत है ना वो सिर्फ कैद खाने की हद तक है, तुम वैसे सहाबी नहीं हो जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये साहिब या सिजनी, ए मेरे कैदखाने के रफीकों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार, कि क्या अरबाबुम मुतफर्रिकून, जुदा जुदा माबूद, अरबाब का जो लफ्ज है रब, रब की जमा अरबाब, ठीक है, तो क्या जुदा जुदा मुतफर्रिक रब, डिस्पर्स कस्म के जो तुमने नाउज बिल्ला प्रोवाइडर्स बनाए हुए हैं, सस्टेनर्स बनाए हुए हैं, क्या ये ज्यादा बेहतर है, खैरुन असल में अखयरु होता है ज्यादा बेहतर, अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार, या अल्लाह अल वाहिद अल कहार, या वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, जो कि अकेला रब है, अकेला मालिक है, अकेला माबूद है, और अल कहार है यानी जबरदस्त है, ठीक है। तो अब जो है ना यूसुफ अलैहि सलाम अपने आबाओ अजदाद वगैरह के बारे में एक तो बता दिया, तो इससे जो है ना वो यानी इनके दिलों के अंदर अपनी यानी एक इज्जत पैदा करी, अपनी इज्जत पैदा करी कि देखो मेरे अब्बा वजदाद जो है ना ये सारे शुरफा लोग थे, अच्छे लोग थे, और इनका जो तस्करा है ये उस जमाने में कोई ऐसा नहीं था कि कोई जानता नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम को, तो ये अच्छे लोग थे। माँ का नाना अन्न शरका बिल्ला मिन शही, अल्लाह तआला के साथ शरीक किसी को नहीं ठहराया करते थे, और ये हमारे ऊपर फजल है, ठीक है, यानी शुक्रगुजारी की जो अपनी कैफियत है ना वो भी यानी उसका भी इजहार कर दिया, ठीक है। बीइंग ग्रेटफुल, ये जो बीइंग ग्रेटफुल है ना कि जिसने हमारे ऊपर एहसान किया हम उसके शुक्रगुजार हैं, ये है एक अच्छी इंसानी सिफत, एक अच्छी इंसानी सिफत है, एक वर्च्यू है, ये एक वर्च्यू है, पॉजिटिव वर्च्यू, ठीक है ना। तो इस वर्च्यू के बारे में जब किसी को पता चलता है ना कि अच्छा ये शख्स जो है ये तो अपने मोहसिन का एहसान मानने वाला इंसान है, तो इससे ना उसके दिल के अंदर इसकी इज्जत पैदा होती है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिसने इसके ऊपर एहसान किया ये उसका एहसान मंद रहता है, उसके एहसान का तस्करा करता है, तो ये एक इज्जत पैदा करने वाली सिफत है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, अपनी इज्जत पैदा कर रहे हैं इन लोगों के दिलों में, या कोशिश कर रहे हैं, बाकी पैदा तो अल्लाह ने करनी है, अल्लाह का फैसला होगा तो पैदा होगी, अल्लाह का फैसला होगा तो पैदा नहीं होगी, लेकिन कोशिश करना ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम है, हमारा भी यही काम है, कोशिश करना कि भाई इज्जत पैदा हो लोगों के दिलों में, ठीक है, ताकि आप अल्लाह के दीन का काम सही से कर सकें। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से क्या दुआ मनकूल है कि क्या थी, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह मुझे लोगों की नजरों में बड़ा बना दीजिए और अपनी निगाहों में मुझे छोटा बना दीजिए, ठीक है, तो लोगों की निगाहों में बड़ा क्यों बना दीजिए, ताकि वो मुझे हदीये तोहफे ला करके दिया करें और मुझे जो है वो किसी ऊंचे तख्त पे बिठाए करें और मेरी जो है वो फैमिली को जो है वो मुझे खानदानी तौर पर न जाने क्या से क्या बना दिया करें, नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि अगर लोगों की निगाहों में मेरी इज्जत नहीं होगी तो वो मेरी बात को सुनेंगे नहीं और उसको तवज्जो उसके ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी उनके दिलों के अंदर, ठीक है, इसी वजह से उलमा को खुद भी इज्जत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जज़ाकुम अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुन नासे कबीरा, ये उमर रज़ियल्लाहु से मनकूल दुआ है। तो इसी वजह से ना उलमा को खुद भी अपनी इज्जत की फिक्र करनी बहुत जरूरी है और दूसरे लोगों को भी उलमा की इज्जत की फिक्र करनी बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो उलमा की बात सुने, आप चाहते हैं कि आपने जो उनसे सीखा है आपको फायदा हुआ उससे तो दूसरे लोगों को भी उससे फायदा हो, तो पहले आप उलमा की इज्जत बनाए लोगों के दिलों में, राइट, ऐसा ना हो कि आप जो है वो उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करे चले जा रहे हैं और फिर आप ये भी चाहते हैं कि लोग जो है वो उन उलमा से बात भी सीखें, भाई आपने तो बदगुमान कर दिया लोगों को उनके बारे में, ठीक है ना, जब आपने खुद जो है वो बदगुमान कर दिया तो अब वो बंदा क्यों सुनेगा ऐसे शख्स की बात कि जिससे के जिसके बारे में वो बदगुमान हो चुका हो, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनके इंटेलेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, पहले इनके दिलों को एड्रेस किया फिर इनके इनके जहन को एड्रेस किया कि ए मेरे सज्जन के साथियों, क्या ये यानी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना कि क्या ये ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर उसके बाद फरमाया मा तअबुदून मिन दूनिही, कि तुम नहीं पूछते हो सिवाय उसके जो तुम यानी उसके अलावा तुम नहीं पूछते हो, इल्ला अस्मा समय तुमूहा, मगर ये यानी ये क्या चीजें हैं या जिनको तुम पूछते हो उनके उसके अलावा अल्लाह के अलावा जिसको तुम पूछते हो ना, तो ये कुछ नहीं है सिवाय चंद नामों के, समय तुमूहा जो तुमने उनके लिए रख ली है, अंतुम व आबाउकुम, तुमने भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने भी जो बस अपनी तरफ से गढ़ लिए हैं, ठीक है ना, किसी को कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी को कोई वाला नाम दे दिया किसी के, और यहाँ पे नाम से मुराद जो है वो सिर्फ नाम नहीं है कि तुमने इनको किसी को लात कहना शुरू कर दिया, किसी को मनात कहना शुरू कर दिया, किसी को उज्जा कहना शुरू कर दिया, बल्कि नाम के अंदर सिफत भी आ जाती है, नाम के अंदर सिफत भी आ जाती है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो उनको तमाम अशिया के नाम बता दिए, कुरान मजीद में क्या है, नाम बता दिए। ठीक है, तो नाम बता देने के बाद क्या फायदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम को, हाँ भाई ये जो है वो दरख्त कहलाता है, ये जो है वो पत्ता कहलाता है, ये पत्थर कहलाता है, ये पानी कहलाता है, सो वॉट, अब क्या करें भाई, तो खाली नाम बता दिए। नहीं, उलमा ने फरमाया नाम बताने का मतलब ये है कि उनके जो जो नेचर है वो भी बता दी कि ये आग है, इस आग से जो है ना वो जल जाया करती हैं चीजें, इस आग से गर्मी पैदा होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है आग से। तो सिर्फ आग नाम नहीं बता दिया बल्कि उसकी नेचर भी समझा दिए, यानी वदियत कर दी उनके दिल के अंदर, उनकी इंटेलेक्ट के अंदर। ठीक है, उसी तरह पानी के बारे में बता दिया कि ये पानी जो है ना ये पी सकते हो, अपनी प्यास की कैफियत को तुम बुझा सकते हो, और पानी को जो है वो आग के ऊपर डालोगे तो आग जो है वो बुझ सकती है, पानी से जो है ना वो पौधों को तुम नशोनुमा दिलवा सकते हो, क्योंकि खेती बाड़ी करनी थी ना आदम अलैहि सलाम ने जमीन में जाकर के। तो नाम बता देने का मतलब कि उनकी क्वालिटीज और उनकी सिफात भी बता दी। तो यहाँ पर जो यूसुफ अलैहि सलाम फरमा रहे हैं ना कि ये बस चंद नाम है जो कि तुमने इनको दे दिए हैं, तो यहाँ पे नाम देना इज नॉट द मकसद, बल्कि तुमने जो है ना वो सिफात एसोशिएट कर दिए हैं इन बुतों के साथ, कि ये जो है ना वो बारिश का बुत है, ये जो है वो फलाना लक्ष्मी देवी है, और ये जो है वो फलाने किस्म का काम करने वाला बुत है, और ये फलाने किस्म का काम करने वाला बुत है। ठीक है, तो ये चंद नाम है यानी चंद सिफात हैं जो कि तुमने घड़ ली है अपनी तरफ से, और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, मा अंजल अल्लाहु, अल्लाह ताला ने तो कोई नाजिल नहीं किया था, बिहा मिन सुल्तान, ठीक है, इन नामों के बारे में कोई चीज अल्लाह ताला ने तो कोई दलील, कोई कोई ताकत, सुल्तान कहते हैं किसी फर्म चीज को, कंफर्म चीज को, ठीक है, तो दलील जो होती है वो भी एक फर्म चीज होती है, अगरचे कि वो फिजिकली फर्म चीज नहीं होती, वो एक इंटेलेक्चुअली फर्म चीज होती है, दलील, प्रूफ। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजों के लिए एक फिजिकल प्रूफ भी होता है, लेकिन ये जो बुतों के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज हैं इस बुत के अंदर, इस बुत के अंदर क्या सिफत है, इस बुत के अंदर क्या पावर है, तो इसके लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रूफ, कहाँ से आया इंटेलेक्चुअल प्रूफ तुम्हारे पास, ठीक है, कौन कौन सी सुल्तान है तुम्हारे पास, अकली दलील क्या है तुम्हारे पास, अल्लाह ताला की तरफ से अकली दलील कैसे आती है कि या तो कोई सच्चा आदमी आ करके बताए कि इस चीज के अंदर ये सिफत मौजूद है, ठीक है ना, तो वो एक अकली दलील होगी, जिसको कि नकली दलील भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी से नकल करके कह रहे होते हैं कि अभी उन्होंने फरमाया था कि ये काम ऐसे होता है, लेकिन इसमें अकल का क्या ताल्लुक, अब्बा हुजूर ने फरमाया था कि फलानी साहब के पास ये वाली ताकत है, तो अब्बा हुजूर अगर सादिक और अमीन हैं तो फिर तो ये अकली दलील हुई, क्योंकि अब्बा हुजूर सादिक और अमीन है, और सादिक अमीन शख्स जो होता है वो झूठ नहीं बोलता, तो उसने अगर किसी चीज के बारे में बताया कि ये चीज फलानी पावर रखती है तो वो सच होगी, क्योंकि बोलने वाला सादिक है, अमीन है, तो अकल ने ये फैसला किया ना कि सादिक और अमीन शख्स जो है वो झूठ नहीं बोला करता, ठीक है, लेकिन चूंकि आपने अब्बा हुजूर से इस बात को नकल किया है, तो इस वजह से इस अकली दलील को आप नकली दलील भी कह देते हैं। ठीक है, तो दो किस्म की दलीलें होती हैं, एक अकली और दूसरी नकली, लेकिन नकली दलील भी अकली दलील होती है, क्योंकि आप जिससे नकल कर रहे हैं उसको आप अपनी अकल के तराजू में तोलते हैं, क्या तोलते हैं, क्या वो सच्चा है, क्या वो अमीन है, क्या वो दयानतदार है, अगर है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जो बता रहा है वो सच बता रहा होगा, तो ये अकली इन्फ्रेंस हुई ना, इंटेलेक्चुअल इन्फ्रेंस हुई ना। उसी तरह से दूसरी है प्योरली अकली दलील, क्या मतलब कि कोई आपको बता नहीं रहा, किसी से आप नकल नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद अपनी अकल को इस्तेमाल करके किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे है तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है, वो प्योर अकली दलील आप उसको कह सकते हैं। तो ना तो तुम्हारे पास कोई अकली दलील है, ना तुम्हारे पास कोई नकली दलील है। मा अंजर अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, कोई तो दलील अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं करी तुम्हारे ऊपर। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इन इन नाफिया, नहीं है अल हुक्म। अल हुक्म का मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट कमांड, यानी ऑल इनकम्पसिंग कमांड, सिवाय अल्लाह के लिए। दुनिया के अंदर छोटे मोटे हुक्म तो अब्बू भी दे देते हैं, अम्मी भी दे देती हैं, बॉस साहब भी दे देते हैं, है ना, हत्ता के कभी बच्चा भी कोई हुक्म दे देता है। लेकिन अल हुक्म जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। इस्तीआब हुक्म का ऑल कवरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अमरा, उसने हुक्म किया, अन ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, नहीं तुम सब के सब इबादत करो सिवाय उसको, उसकी सिवाय उसकी, ठीक है, यानी उस तो नहीं है। यानी इसके अंदर कोई टेढ़पन नहीं है, कोई कुजी नहीं है, कोई किंकिंग नहीं है, जो कहते हैं ना वो वॉशिंग मशीन के साथ जो है ना, वो एक वो ड्रेनेज के लिए पाइप लगा हुआ होता है, तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने से पहले उसमें लिखा हुआ होता है कि प्लीज चेक कि द पाइप इज नॉट किंक्ड, ठीक है, यानी उसके अंदर कोई टेढ़पन नहीं है। वरना जो है ना, जब वॉशिंग मशीन चलेगी तो उसके अंदर से जब पानी निकलेगा ना, तो वो इस टेढ़े वायर के, टेढ़े पाइप के अंदर जो है वो फंस जाएगा और वो वापस अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो वॉशिंग मशीन जो है ना वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर कोई कुछ ही नहीं होनी चाहिए, टेढ़पन ही होना चाहिए। तो ये जो दीन है ना, यही है सीधा दीन। बाकी जितने अदियान हैं वो सारे के सारे इस दीन की मस्ख शुदा शक्लें हैं, तोड़ मरोड़ कर करके किसी ने जो है वो ईसाइयत बना ली, किसी ने जो है यहूदियत बना ली, किसी ने हिंदू मत बना लिया, किसी ने बुद्ध मत बना लिया, किसी ने मजूसियत बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। वो सारी की सारी टेढ़ी तिरछी किस्में हैं। असल दीन तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह के सिवा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वलाकिन्ना अक्सर नास ला यालमून, लेकिन अक्सर इंसान ये बात नहीं समझते, नहीं जानते। क्या मतलब नहीं जानते? मतलब नहीं समझते इस बात को। उनको बताया तो जा रहा होता है, अल्लाह ताला तो हुज्जत पूरी करते हैं कि अपनी तौहीद का इल्म जो है वो हर इंसान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हर इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि अक्सर इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया था वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, ठीक है, और यहां पर फरमाया ला यालमून। एंड रिजल्ट तो दोनों का एक ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की वजह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट अल्फाज भी हैं, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी है। या साहिबी या सिजनी, आगे फरमाते हैं कि ऐ मेरे कैद खाने के रफीकों, अम्मा अहदुकुमा के, तुम दोनों में से एक जो फयस्की रब्बहु खमरा, तुम दोनों में से एक जो है ना वो अपने रब को शराब पिलाएगा। रब से या क्या मुराद यहाँ पर? रब से मुराद जो है वो उसका जो दुनियावी एम्प्लॉयर है, ठीक है, या उसका दुनियावी जो आका है, वो एम्प्लॉयर आका ही यहाँ पे मुराद है, क्योंकि ये शायद गुलाम नहीं थे, ये सर्वेंट्स थे, ठीक है। तो जो उनको खाना पीना देता था, जो उनको सैलरी देता था वगैरह, तो उसको इनका रब कहा, ठीक है। तो ये रब का जो लफ्ज है, इस तरीके से रब्बुल माल या रब्बुल बैत या इस तरह का जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में उस जमाने में ये चीज यानी किसी और इंसान के लिए भी इस्तेमाल होती थी। तो वो अपने रब को जो है वो खमर पिलाएगा। वह अम्मा आखरू एंड फॉर द अदर वन, है ना, अम्मा का जो है वो अंग्रेजी में अगर तर्जमा करना चाहें एस फॉर, यानी जहां तक दूसरे का ताल्लुक है, तो उसके साथ क्या होगा, फयुसलब, वो सलीब के ऊपर चढ़ाया जाएगा, ठीक है, सूली दिया जाएगा, फताकुलु तैरु मिर रासे ही, पस परिंदे उसके रास से खाएंगे, उसके सर से खाएंगे, यानी छोड़ दिया जाएगा उसको, मर जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वल्चर्स आएंगे, और गोश्तखोर किस्म के जानवर जो जो परिंदे होते हैं, वल्चर्स ही होते हैं वो, गिद्ध, तो वो आकर के उसको नोचेंगे, और जाहिर है ऊपर से ही नोचना शुरू करेंगे, क्योंकि परिंदा आकर के कहाँ बैठेगा सबसे पहले, उसके सर के ऊपर बैठेगा आकर के। कुदियल अमरु अल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, ये अमर यानी ये जो मामला है ना, इसका फैसला कर दिया गया है, कुदिया, कदा का मतलब उसने फैसला कर दिया, और कुदिया ये मजहूल, ठीक है, तो ये दिस हैज बिन डिसाइडेड, अल्लज़ी फीही, वो जिसको के तुमने दरियाफ्त किया था, जिसका कि तुमने फतवा मुझसे मांगा था, ठीक है, इस्तफ्ता, इस्तफ्ता तुमने किया था, तुमने फतवा तलब किया था ना, तो तुमने तस्तफ्तियान, तुम दोनों ने जो है ना ये फतवा जो तलब किया था ना, इसके बारे में अब ये फैसला हो गया है। आगे इसकी थोड़ी और तफसील आ रही है कि इसका क्या मतलब, फैसला कर दिया गया है। वकाला, और उन्होंने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, लिल्लज़ी गन्न अन्नहु नाजिम मिन्हुमा, जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुमान था, जन्ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुमान किया जिसके बारे में कि वो निजात पा जाएगा, नाजी, निजात पाने वाला, ठीक है, यानी दे अदर वन, जिसको जो कि रब को जाकर के खमर पिला रहा होगा, दूसरा तो मारा जाएगा, ठीक है, तो इनका जिसके बारे में ये गुमान था ना कि जो निजात पा जाएगा, मिनहुमा, इन दोनों में से, के उज़्कुरनी अंदर रब्बिक, कि मेरा तुम तज़किरा करना अपने रब के सामने, यानी अपने बॉस के सामने, जब तुम उसके पास वापस जाना तो मेरा तज़किरा कर देना, फअंसाहु शैतानु, बस शैतान ने उसको भुला दिया, इस बात को भुला दिया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे रिक्वेस्ट करी थी, जिक्र रब्बी ही, यानी अपने मालिक से जिक्र करने की जो बात की गई थी वो शैतान ने उसको भुला दी, बुला दी, फलबिथा फिस सिजनी, बस वो रहे कैद खाने के अंदर, बिदआ सिनीन, बिदआ यानी मुहावरा तर्जुमा, तो कई सिनीन, सिनुन की जमा कई साल, ठीक है, लेकिन आगे तशरीह में भी लिखा हुआ है, तो बिजा जो है वो अरबी जुबान के अंदर 3 से 9 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, from 3 to 9, तो तफसीर में लिखा हुआ है कि 7 साल और रहे ये कैद खाने के अंदर, ठीक है जी, तो ये इन आयात का तर्जुमा हो गया, किसी को तर्जुमे के मुताबिक सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद खुलासा तफसीर है जो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की बयान कुरान से हजरत ने यहाँ पे नकल की है, तो वो फरमाते हैं कि और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ यानी उसी जमाने में और भी 2 गुलाम बादशाह के जेल खाने में दाखिल हुए, तो इसके मुताबिक तो खैर गुलाम ही थे यानी स्लेव्स थे, तो जिनमें से एक साकी था और दूसरा रोटी पकाने वाला बावर्ची था, और उनकी कैद का सबब ये शुबो था कि उन्होंने खाने में और शराब में जहर मिलाकर बादशाह को दिया है, उनका मुकदमा जेरे तहकीक था, तो उनको जो है वो बंद कर दिया गया था कि उस दौरान तहकीक होगी, तो अगर प्रूव हो गया तो फिर सजा दे दी जाएगी वरना छोड़ दिया जाएगा, इसलिए कैद कर दिए गए, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि उसके बारे में ऐसा शुबा हो गया है तो फिर तो उसने भाग जाना है ना, तो पहले पकड़ के कैद कर देते हैं फिर उसके बाद मुकदमा चलाते हैं, तो यही पुलिस वालों का आजकल भी तौर तरीका यही होता है। उन्होंने जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में बुजुर्गी के आसार पाए, तो उनमें से एक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने आप को ख्वाब में देखता हूं कि जैसे शराब बनाने के लिए अंगूर का शीरा निचोड़ रहा हूं, ठीक है, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बुजुर्गी के आसार देखे, ठीक है, बुजुर्गी के आसार से मतलब उनके बालों के अंदर सफेद बाल देखे, इस वजह से पूछ लिया नहीं, बल्कि मुहसिनीन, मुहसिनीन का मतलब के यानी नेकी में बुजुर्गी, ठीक है, यानी नेकी में सीनियर थे वो, अच्छे अखलाक वाले थे और सब कुछ, तो ये बुजुर्गी यहाँ पे मुराद है, सीनियर होना, उसने कहा कि मैं जैसे शराब बनाने के लिए अंगूर का शीरा निचोड़ रहा हूँ और बादशाह को वो शराब पिला रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को इस तरह देखता हूँ कि जैसे अपने सर पर रोटियां लिए जाता हूँ और उसमें से परिंदे नोच नोच कर खाते हैं। हमको इस ख्वाब की जो हम दोनों ने देखा है ताबीर बतला दीजिए। आप हमको नेक आदमी मालूम होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ये लोग एतकाद के साथ मेरी तरफ माइल हुए हैं, ठीक है, यानी अच्छा गुमान रख करके मेरी तरफ माइल हुए हैं एतकाद के साथ, तो अकीदत जिसको कि हम उर्दू में आमतौर पर अकीदत कहते हैं, तो चाहा कि उनको सबसे पहले ईमान की दावत दी जाए। इसलिए अव्वल अपना नबी होना एक मुअज्जे से साबित करने के लिए फरमाया कि देखो जो खाना तुम्हारे पास आता है, जो कि तुमको खाने के लिए जेल खाने में मिलता है, मैं उसके आने से पहले उसकी हकीकत तुमको बतला दिया करता हूँ। बतला दिया करता हूँ से मतलब या तो इससे पहले भी बतला चुके थे या अभी जो है वो फरमाए कि मैं बतला देता हूँ तुम्हें। बतला दिया करता हूँ का मतलब मैं तुम्हें बतला देता हूँ कि फला चीज आएगी और ऐसी ऐसी होगी, ठीक है। तो ये कैसे पता चल गया? ये मोजे से मुझे पता चल गया, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे बताया बगैर असबाब के इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। उसके बारे में पीछे काफी बात हो चुकी कि मजीद जो है ना वो इनको अपनी तरफ माइल करने के लिए, क्योंकि दावत के लिए ये अकीदत होना जो है वो लाजमी चीज होती है। अच्छा, स्पेशली उन लोगों को दावत देने के लिए जो कि आपको पहले से नहीं जानते। अगर वो आपको पहले से जानते हैं तो पहले ही आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि जिससे कि आपका सच्चा होना और आपका नेक होना उन लोगों के ऊपर साबित हो चुका हो, तो फिर जो है वो वही आपके लिए काफी होगा दावत देने के लिए। लेकिन अगर पहले से वो नहीं जानते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि उनके दिल को लगती हो, ठीक है। जैसे आजकल जो है ना वो हमारे बहुत से बुजुर्ग जो कि मतलब तो बहुत से बुजुर्ग तो खैर नहीं, लेकिन हमारे अपने हजरत जो हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे इवन हमारे जैसे भी के जो के अपनी दुनियावी तालीम को और अपनी अंग्रेजी से जो है ना वाकफियत को या साइंस से अपनी वाकफियत को ये अपने दावत के मैसेज के अंदर जो है ना वो शामिल करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भी बीच बीच में अल्फाज भी बोलेंगे, कुछ अंग्रेजी के अल्फाज भी बोलेंगे, कुछ जो है वो साइंटिफिक नॉलेज का भी इजाफा कर देंगे अपने बयान के अंदर, अपनी बात के अंदर। क्यों कर रहे हैं सब कुछ? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो अगले बैठे हुए लोग हैं ना इनके लिए अंग्रेजी और साइंस का इल्म जो है ना ये बड़ी इज्जत वाली चीज है, बड़ी इकराम वाली चीज है। हमारे लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए अंग्रेजी नहीं। हम तो ये हर वक्त जिससे फिर उस लेवल पे गुफ्तगू होती है उसको ये कहते हैं कि भाई क्या क्या ताल्लुक है अंग्रेजी का हमारे साथ। हजारों मील दूर जो है वो एक मुल्क है जिसकी जुबान ही अंग्रेजी है, ये एशिया के अंदर पैदा होने वाले और पलने बढ़ने वाले और वहीं पे जो है वो जिंदगी गुजारने वाले वो चाइनीज क्यों नहीं बोलते? अगर पड़ोस की लैंग्वेज आनी चाहिए तो भाई चाइनीज आनी चाहिए थी, राइट। और जो है वो अपनी इलाकाई जुबान आनी चाहिए थी, और जो है वो अफगानी की अफगानिस्तान की अफगानी आनी चाहिए थी, पश्तो आनी चाहिए थी, या बांग्लादेश की जो है वो बंगाली आनी चाहिए। तुमको अंग्रेजी क्यों आती है सबके सबको, है ना? तो ये तो खालिसतन गुलामी से ज्यादा उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, ठीक है ना। फिर जब जाहिर है जब गुलामी में आप नहीं बिल्कुल ही उसकी तहों में पहुंच गए गुलामी की, तो फिर वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। तो अब जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम के ऊपर फिर उसको सीखना सिखाना पड़ जाता है, वरना इब्तिदा तो इसकी खालिसतन गुलामी से हुई है। तो जो हमारे मशायख है ना जो कि अल्लाह के दीन से वाकिफ हैं और जिनकी नजर आखिरत पर होती है, तो वो उनके नजदीक तो अरबी से ज्यादा अफजल कोई और चीज हो ही नहीं सकती। अंग्रेजी तो यानी काफिरों की जुबान है, झूठे और दज्जालियों की जुबान है उनके नजदीक, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जिनको वो दावत दे रहे हैं उनके नजदीक इसी चीज की अहमियत है, और अंग्रेजी में कोई बात कर देना ये हराम नहीं है क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, राइट। हराम नहीं है उस लैंग्वेज को बोलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो कि दूसरे एक्सट्रीम पर हैं। अभी हम जो है ना मस्जिद में हजरत का बयान हो रहा था, ठीक है, तो ये आजिज जो है बैठा मस्जिद के अंदर, हजरत हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो बयान फरमा रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना वो अपने बयान में जैसे कि आदत है, और वो ऑडियंस में सारे लोग मौजूद थे, मदरसे के भी थे गैर मदरसे के भी लोग मौजूद थे, तो हजरत ने वही कुछ अंग्रेजी के अल्फाज बोले अपनी जुबान में, अपने अपने बयान के अंदर। तो मेरे पीछे कोई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जो है ना जो बोलना शुरू किया है अपने बराबर वाले साथी से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अस्तग़फिरुल्लाह। अंग्रेजी अंग्रेजी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी सख्त गुस्से में और सख्त कराहियत के साथ वो बंदा जो है वो अपने बराबर वाले शख्स को बोले चला जा रहा है, क्यों अंग्रेजी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अंग्रेजी ला हौला वला कुव्वता बोले जा रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह बोले जा रहा है, जैसे कि नाउज़ बिल्ला हजरत मस्जिद में बैठ करके जो है ना वो नाउज़ बिल्ला कोई हराम काम कर रहे हैं, राइट? तो इस वजह से इस बात को समझा दिया, समझाने की कोशिश कर ली, बाकी समझना ना समझना, समझना ये तो अल्लाह का फेल है, आपके साथ हैं तो फिर नहीं गिना दें, लेकिन ये इसकी हकीकत है, ठीक है? तो अंग्रेजी की कोई इज्जत और अंग्रेजी को कोई अजमत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मशायख के दिनों में नहीं होती। मकसद यही होता है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो काम कर रहे थे कि उनको कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे ना उनके दिल के अंदर कुछ अकीदत कुछ इज्जत पैदा हो जाए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो फरमाए कि अच्छा मैं जो हूँ वो मस्जिद के अंदर मैंने मुड़ के देख लिया उनको कोई लफ्ज बोल दिया तो आगे से पता नहीं कोई झगड़ा वगड़ा ना स्टार्ट हो जाए, मैं खामोश जो है ना वो दिल पे जबर करके वहां पे बैठा रहा। बिल आखिर जो है ना, अच्छा उनका साथी खुद उनको समझा रहा था कि यार क्या हो गया, ऐसे भी क्या हो गया कि है, बिल आखिर वो जो है ना वो चले ही गए वहां से। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र है ये बंदा चला गया इधर से, ठीक है। खैर तो कहाँ पे थे भाई? तो मैं कहा कि देखो हाँ ये लोग एतकाद के साथ मेरी तरफ माइल हों तो चाहे कि उनको सबसे पहले ईमान की दावत दी जाए, इसलिए अव्वल अपना नबी होना एक मौजज़े साबित करने के लिए फरमाया कि देखो जो खाना तुम्हारे पास आता है, जो कि तुमको खाने के लिए जैन खाने में मिलता है, मैं उसके आने से पहले ही तुम्हारी तुम्हें उसकी हकीकत बतला दिया करता हूँ कि फला चीज आएगी और ऐसी ऐसी होगी, और ये बतला देना इस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फरमाया है, यानी मुझको वही से मालूम हो जाता है। तो ये एक मुआजजा है जो दलील नबूवत है, और इस वक्त ये मुआजजा खास तौर पर इसलिए मुनासिब था कि जिस वाकये में कैदियों ने तबीर के लिए उनकी तरफ रुजू किया वो वाकया भी खाने ही से मुतालिक था, ठीक है? तो खास तौर पे जो है ना वो खाने की तावील बता दी क्योंकि वो भी खाने से मुताल्लिक थी, दोनों के दोनों ख्वाब थे। अस्बात नबुवत के बाद आगे अस्बात तौहीद का मजमून बयान फरमाया। अब वो नबी थे तो उन्होंने अस्बात नबुवत ही करनी थी, ठीक है ना? अब नबुवत का दरवाजा बंद हो गया, अब तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा विलायत का दरवाजा खुला हुआ है, या ये कि जो सालेह मुसलह का दरवाजा खुला हुआ है कि भाई कोई इंसान अपने ऊपर मेहनत करके जो है वो सालेह के दर्जे पे पहुंचे और फिर जो है ना उसके मशाइख उसको हुक्म करें कि अब आप जो है वो मुसलह का काम भी करना शुरू करें, तो फिर वो मुसलह का काम करना शुरू करें। तो अपने आप को एक यानी मुसलह के तौर पर लोग बता सकते हैं कि जैसे भाई मैं मुफ्ती हूँ, मैंने दारुल इफ्ता से जो है वो फतवे का कोर्स किया हुआ है, मैंने फुला जगह से जो है वो दीन का इल्म हासिल किया हुआ है, और मैंने अगर फिर साइंटोलॉजी के कुछ लोग बैठे हों तो उनको कुछ अपना सेक्युलर एजुकेशन के बारे में भी बताया जा सकता है, ठीक है? यानी अपना पीछे से जो कनेक्शन है ना, पीछे से नस्बत नस्बत है इज्जत के लिए एक प्रूफ के तौर पर बन जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बता दी जा सकती हैं अगर उनका फायदा नजर आ रहा हो तो, ठीक है? जैसे कि हमारे हजरत अपने अपने शेयर इंट्रोड्यूस करवाते थे, ठीक है? सही चलें जो भी करना आप। अच्छा चैट विंडो पे कुछ मैं देखा नहीं, मिलके चैट विंडो ही बंद हुई हुई उस वक्त से। बुजुर्गी के आसार के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? मुहसिनीन, ठीक है ना? इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, ठीक है, एहसान करने वाले, तो यही है जिसको के तशरीह में बुजुर्गी के आसार बयान फरमाया। अच्छा तो ऐसी ऐसी होगी। और ये तावील बतला देना, इस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फरमाया है, यानी मुझको वही से मालूम हो जाता है, तो ये एक मौजजा है। अच्छा, ये हो गया ना। आगे फरमाते हैं कि मैंने तो उन लोगों का मजहब पहले ही से छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, और वो लोग आखिरत के भी मुनकर हैं, और मैंने अपने इन बुजुर्गवार बाप दादों का मजहब इख्तियार कर रखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इसहाक का और याकूब अलैहिस्सलाम का, और इस मजहब का रुकन आजम ये है, जब यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट पिलर है इस मजहब का मेरे बाप दादा और परदादा का, कि हमको किसी तरह से जेबा नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक इबादत करार दें। ठीक है, मा काना लना, इट डज नॉट बिहूव अस, इट डज नॉट सूट अस अन नुश्रिका बिल्लाह मिन शय, कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी भी शय को शरीक करार दें, पार्टनर करार दें। शरीक का मतलब ये पार्टनर इन हिज अथॉरिटी, इन हिज पावर करार दें। तो ये सबसे बुनियादी और सबसे अहम रुकन है इस दीन का, अकीदा तौहीद वाला। ये अकीदा तौहीद हम पर और दूसरे लोगों पर भी खुदा ताला का एक फर्ज है कि उस दौलत दुनिया और आखिरत की फलाह है। ठीक है, यानी इवन इस बात पर जमा हो जाना और इस बात के ऊपर फाइनल हो जाना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये भी अल्लाह की तौफीक से ही है। ठीक है, हालांकि बजाय तो बंदे का अपना इख्तियार नजर आता है कि वो तौहीद को पसंद कर रहा है कि वो शिर्क को पसंद कर रहा है अपनी अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन हमारा जो भी अमल है वो अच्छा है तो वो अल्लाह ताला को ही कोई भी इसका क्रेडिट देंगे। यही अदब है, इसको अदब कहते हैं। तो खुदा का एक फजल है कि उसकी बदौलत दुनिया और आखिर की फलाह है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते, यानी तौहीद को इख्तियार नहीं करते। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो तौहीद का पैगाम हर इंसान तक पहुंचा दिया है। ठीक है, किसी न किसी जाहिरी चीज को सबब बना करके, या अपने रसूल को सबब बना करके पहुंचा दिया, या किसी रसूल के रसूल को सबब बना करके तौहीद का पैगाम पहुंचा दिया, या किसी किताब के जरिए से पहुंचा दिया, किसी और रिसाले के जरिए से पहुंचा दिया, दीवार पे लिखवा करके वो मैसेज पहुंचवा दिया, राइट, या जो है वो कोई भी ऐसा सबब जो है जिसके वास्ते से अल्लाह ताला ने तौहीद का पैगाम पहुंचा दिया हर बंदे तक। ठीक है, या ये कि अगर कुछ भी कोई कहे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं पहुंचा मुझ तक, तो अल्लाह ताला ने ये फितरत के अंदर गूंद करके तुम्हें पैदा किया कि तुम्हारा परवरदिगार एक ही है, तो कोई एक इंसान भी जो है ना वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि तौहीद का पैगाम उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसको इख्तियार नहीं किया तो ये नाशुक्री है। ठीक है, यानी जब कोई अच्छा और सही पैगाम पहुंच जाता है ना, तो अब उसका शुक्र किया है उसको एडॉप्ट कर लेना, ठीक है ना, उस पैगाम के को एक्सेप्ट कर लेना। जब कोई आपको दावत दे रहा है तो ये आपकी शुक्रगुजारी होगी कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये अल्लाह की नेमत का नंबर वन शुक्र ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आप उसको जो है ना वो यानी ले लें अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद उसके मुताबिक जो है ना वो जिंदगी गुजारें, या उसका जो है वो हक है वो अदा करें, ये फिर उसके बाद करने वाले शुक्र है। ठीक है, यानी जैसे इस्लाम किसी ने प्रेजेंट किया किसी काफिर के सामने, उसने अगर उस पैगाम को रद्द कर दिया या अपना मुंह मोड़ दिया उससे, तो उसका मतलब ये कि उसने पैगाम का शुक्र अदा नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरा दर्जा क्या है कि पैगाम तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, लेकिन अब तौहीद को एक्सेप्ट कर लेने के बाद, दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेने के बाद, क्या उसने अल्लाह के जो दीगर अहकामात थे उनको भी पूरा किया कि नहीं किया? जैसे नमाज, नमाज फर्ज हो जाती है जब कोई इंसान मुसलमान होता है, तो अब उसने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन जब उसके सामने नमाज पेश की गई कि भाई नमाज 5 वक्त जो है वो इस्लाम के अंदर पढ़नी जरूरी है, तो नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, रोजा नहीं रखूंगा, जकात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया, ईमान तो वो ले आया, लेकिन अब इस ईमान का शुक्र उसने अदा नहीं किया। ठीक है, उसने ईमान का शुक्र अदा नहीं किया, तो ये शुक्र का जो है वो दूसरा दर्जा है। ठीक है जी, तो शुक्र का सिलसिला जो है ना, ये खत्म नहीं हो जाता किसी एक काम को ठीक तरीके से करने के बाद। शुक्र का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, ये जारी रहता है जब तक कि इंसान की मौत ना आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं, कुछ लोगों को देर भी हो रही है काफी, तो उनका लिहाज भी कर लेते हैं। सही, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।